अरमान की जिद। अभी राजवीर ने खुद को छुपाकर रखा हुआ है, तो कोई चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। इसीलिए अब तुम्हें उसे खोजने के बजाय सिर्फ उसके सामने आने का इंतजार करना होगा। अब आगे। प्रोफेसर प्रशांत की ये सारी बातें सुनकर आस्था के अंदर काफी हिम्मत भर गई थी। उसने खुद के गुस्से को शांत करते हुए मन ही मन फैसला लिया कि वो अब पूरे जोश, ताकत और होशो हवास में इस मिशन में आगे बढ़ेगी, क्योंकि प्रोफेसर साहब जो भी बातें कह रहे थे कहीं ना कहीं ठीक कह रहे थे। इसीलिए उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम वो राजवीर जिंदल के बाहर निकलने का इंतजार करेंगे और अगर हो सकेगा तो मैं उसको खोज निकालूंगी। ये बोलते हुए आस्था के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ साफ छलकने लगता है। आस्था का ये कॉन्फिडेंस देखकर कहीं न कहीं वंशिका और प्रोफेसर साहब को अपने मन में एक अलग ही तरह पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी। फिलहाल प्रोफेसर प्रशांत ने वंशिका से कहा कि आगे का काम वो खुद संभालेंगे। तुम कल समय पर आ जाना, क्योंकि तुम्हें रोजाना 2 घंटे यहाँ आकर एंटीडोट के लिए मेहनत करनी होगी। अभी फिलहाल तुम घर जाओ, क्योंकि इसके लिए एक खास तरह के केमिकल की जरूरत है, तब तक मैं उसका इंतजाम कर लूंगा। ये बोलकर प्रोफेसर ने अब उन दोनों को वहां से जाने के लिए कह दिया था। उनकी इस बात पर आस्था और वंशिका ने हामी भरी और वापस सिंघानिया मेंशन की ओर जाने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर अरमान फार्म हाउस से सीधा सिंघानिया मेंशन में आया। उसने जानबूझकर वसुंधरा और बाकी सबको नजरअंदाज किया। नानी माँ की ओर बढ़ते हुए उसने नोटिस किया कि आस्था, वंशिका, रश्मि और राधिका वहां पर नहीं थे। बस हॉल में केवल नानी माँ, रौनक और अभिमान जी ही मौजूद थे। वहीं दादाजी भी गार्डन में वीर से काम करा रहे थे। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने वीर को आराम नहीं करने दिया था, बल्कि वो उससे लगातार कोई न कोई काम करवा ही रहे थे। जैसे ही अरमान वहां आया और उसने बाकी सबको हॉल में बैठे हुए देखा, लेकिन उसे आस्था कहीं दिखाई नहीं दी, तो उसके माथे पर सिलवटें आ गई। वो तुरंत ही रौनक और नानी माँ की तरफ देखकर एकदम से बोला, आपकी बेटियाँ कहाँ हैं? नानी माँ तुरंत उसकी बातों का जवाब देते हुए बोली, अरे बेटवा, रश्मि बिटिया तो राधिका बिटिया के साथ बाहर गई हैं और वंशिका, आस्था बिटिया भी किसी काम से बाहर गई हैं, बस अभी आती ही होंगी। अरमान ने तुरंत ही नानी माँ को टारगेट करते हुए चिढ़कर कहा, वैसे मानना पड़ेगा ओल्ड लेडी, आपने तो इस घर में पूरी तरह से डेरा जमा लिया है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपनी बेटियों को अकेले नहीं भेजना चाहिए? कम से कम इतना तो पूछ लेती कि आपकी बेटियाँ आखिरकार जा कहाँ रही हैं। जैसे ही अरमान ने नानी माँ पर तंज कसा, वैसे ही अभिमान जी तुरंत अरमान पर गुस्से में बरस पड़े। अरमान, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें मांझी से इस तरह की बातें करने का कोई हक नहीं है और तुम मांझी के साथ इस लहजे में बातें नहीं कर सकते। अरमान ने अभिमान जी की बातों को पूरी तरह से अनसुना किया और तुरंत नानी माँ को ऑर्डर देते हुए कहा, मुझे अभी के अभी सभी इस घर में चाहिए। वैसे भी वो लड़की इस घर की मामूली सी कैटेकर है, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझे बताए घर से बाहर कदम रखने की? मुझे मेरे घर के सभी नौकरों से काम है, इसलिए मुझे मेरे सभी नौकर मेरे सामने चाहिए। जैसे ही अरमान ने सभी लड़कियों को नौकर कहकर बुलाया, तो ये सुनकर रौनक का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वहीं नानी माँ की आंखें भर आईं और उन्होंने रोते हुए रौनक के कंधे पर हाथ रखा, क्योंकि नानी माँ को ये अच्छी तरह पता था कि अरमान कितना मुँह फट है। फिलहाल अरमान की आवाज़ बाहर गार्डन में काम कर रहे दादाजी और वीर के कानों तक भी पहुंच रही थी, जिसे सुनकर दादाजी थोड़े परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत ही मेंशन के अंदर जाकर अरमान को देखा। अरमान एकदम पावरफुल ओरा के साथ अपनी पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था। अब जैसे ही दादाजी वहां आए, उन्होंने अरमान से पूछा, बेटा तो इस वक्त घर पर क्या कर रहा है? तुम्हें तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था ना? दादाजी की आवाज़ सुनकर अरमान ने तुरंत पलटकर दादाजी की तरफ देखा और एकदम से उन्हें टोकते हुए सवाल किया, क्या बात है दादाजी, आजकल आप मुझसे खुद ज्यादा ही सवाल करने लग गए हैं। फिलहाल मैं यहाँ आज आपको एक खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। बहुत दिनों से आप मुझसे कोई काम करने के लिए कह रहे थे और मैं हर बार आपकी बात टालता दिया करता था, लेकिन अब मैंने सोचा है क्यों ना मैं आपको कम से कम एक खुशखबरी ही दे दूँ, इसीलिए मैंने आज शाम आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। फिलहाल आप सबको बुला दीजिए, फिर मैं आपको सरप्राइज बताऊंगा। अरमान के शब्द सुनकर दादाजी एक पल के लिए ठिठक गए। उनके मन में यही बात चल रही थी कि आखिर अरमान उन्हें ऐसा कौन सा सरप्राइज देना चाहते हैं। रौनक भी अरमान के मुंह से ये बातें सुनकर एकदम से दंग रह गई और सोचने लगी कि आखिरकार अरमान भाई ऐसा कौन सा सरप्राइज देना चाहते हैं, आखिर वो सरप्राइज क्या हो सकता है। मुझे जल्दी ही इस बारे में पता लगाना होगा कि कहीं वो हम पर कोई नया बम तो नहीं फोड़ने वाले। ये सोचते हुए रौनक अपने दिमाग के घोड़े चलाने लगती है। फिर उसने फट से आस्था को टेक्स्ट मैसेज करके जल्दी ही घर आने के लिए कह दिया। वहीं दूसरी ओर आस्था और वंशिका घर आने के लिए निकल रही थी। जैसे ही उसे रौनक का मैसेज मिला तो वो भी आश्चर्य में पड़ गई। वंशिका ने भी वो मैसेज देखा जिसमें लिखा था कि अरमान ने उन दोनों को घर बुलाया है। फिर उसने आस्था से कहा, चलो घर जाकर देखते हैं आखिर बात क्या है। एक काम करते हैं, रश्मि दीदी को भी मैसेज डाल देते हैं। ये बोलकर वंशिका ने रश्मि को मैसेज भेज दिया। वहीं दूसरी ओर रश्मि और राधिका इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे। रश्मि काफी दिनों से राधिका का मुरझाया हुआ चेहरा और चिड़चिड़ापन को देख रही थी, इसीलिए उसने अकेले में उससे बात करने की सोची। तब राधिका ने रश्मि को अपने मन की सारी बातें बताई कि सुमित बच्चों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और वो माँ बनना चाहती है। रश्मि ने बड़े प्यार से राधिका को समझाया कि कल ही वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगी और उसके सारे टेस्ट कराएंगी,
ये देखने के लिए कि कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए राधिका को परेशान होने की जरूरत नहीं थी। वहीं दूसरी ओर रौनक ने बाकी सबको ग्रुप में मैसेज करके बता दिया कि अरमान भाई जल्द से जल्द घर पर सबको बुला रहे हैं और वो किसी सरप्राइज की बात कर रहे हैं। अब ये जानकर सब लोग काफी दंग रह गए कि आखिरकार अरमान ऐसा कौन सा सरप्राइज देना चाहता है। इसलिए सभी जल्दी से घर पहुंच चुके थे, लेकिन रश्मि और राधिका अभी तक घर नहीं आए थे। तभी सुमित ने राधिका को वहां ना पाकर रौनक से शांत आवाज में पूछा, राधिका कहाँ गई है, यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रही? सुमित की बातों जवाब देते हुए रौनक ने उसे बताया कि राधिका रश्मि दीदी के साथ कहीं गई है। इतना सुनते ही सुमित का दिमाग तेजी से चलने लगा। वो तुरंत अपनी कार लेकर रश्मि के हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। बाकी सब उसे आश्चर्य से जाते हुए देखते रह गए, लेकिन किसी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वहीं अरमान सब लोगों को बुलाने का ऑर्डर देकर अपने कमरे में चला गया था। धीरे धीरे सब लोग आ भी गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सुमित वहां से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गया है। वहीं दूसरी ओर सुमित देर बा करते हुए सीधे रश्मि के हॉस्पिटल आ पहुंचा। रश्मि ने सोचा कि अगर वो राधिका को यहां तक लेकर आ ही गई है तो क्यों ना उसके सारे चेकअप वगैरह कराए जाएं, उसके बाद वो उसके साथ घर चली जाएंगी। इसलिए वो राधिका को सीधे चेकअप करने वाले रूम में लेकर आ गई। लेकिन इससे पहले कि वो राधिका का कोई चेकअप कर पाती, उससे पहले ही ठीक उसी वक्त सुमित वहां अधमका और सीधे राधिका के पास आ पहुंचा। उसने तुरंत ही उसे बेड पर से उठाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से हॉस्पिटल आने की, और वो भी मुझे बिना बताए, जबकि मैंने तुम्हें साफ साफ मना किया था कि तुम अपना कोई टेस्ट वगैरह नहीं कराओगी और ना ही मुझे कोई बच्चा चाहिए, तो तुम्हें क्या जरूरत है बेवजह के टेस्ट वगैरह कराने की?
अब जैसे ही सुमित ने वहां आकर बड़े ही बदतमीजी से राधिका को एकदम से डांटा, तो वैसे ही रश्मि उसकी बात सुनकर एकदम से हैरान हो गई और वो उसे रूखेपन से बोली, सुमित ये क्या तरीका हुआ, तुम राधिका से इतनी सख्ती से कैसे बात कर सकते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने राधिका को भला बुरा कहने की? सुमित रश्मि का क्लासमेट और दोस्त भी था, और सुमित का राधिका के साथ ऐसा बर्ताव करना रश्मि के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, इसलिए उसने सुमित को डांटते हुए रोका। रश्मि की इस बात पर सुमित ने उसे नाराज नजरों से देखा, फिर उसे चेतावनी देते हुए बोला, रश्मि प्लीज इस मामले से दूर रहो, मैंने कहा ना कि राधिका का कोई चेकअप नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। ये बोलकर उसने राधिका का हाथ झट से खींचा। उसने राधिका का हाथ काफी जोर से खींचा था, जिसे राधिका के हाथों में काफी दर्द महसूस हो रहा था। सुमित का बेवजह गुस्सा करना उसके मन को और परेशान कर रहा था। रश्मि ने आगे बढ़कर राधिका और सुमित को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक सुमित राधिका को खींचते हुए आगे बढ़ चुका था, और जब उसे लगा कि राधिका अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रही हैं, तो सुमित ने झट से राधिका को गोद में उठा लिया और जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल से लेकर घर की ओर रवाना हो गया। पूरे रास्ते राधिका बस रोती रही। वहीं रश्मि पूरी तरह से अचंभित रह गई और वो एकदम से सोचने लगी, ये आखिर सुमित को हो क्या गया है, ये राधिका के साथ ऐसे जंगली जैसा बर्ताव कैसे कर सकता है? कहीं ना कहीं रश्मि को सुमित पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। देर ना करते हुए वो अपनी स्कूटी की चाबी लेकर सीधे घर की ओर रवाना हो गई। हालांकि आकाश ने उसे कहा था कि उसके पास इतनी सुविधा है कि वो किसी भी कार का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन रश्मि ने उसे साफ कह दिया था कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही अपनी स्कूटी का इस्तेमाल करेगी, इसलिए उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। इस बीच सुमित और राधिका के पीछे पीछे जाकर रश्मि ने उन्हें फॉलो किया। घर पहुंचते ही राधिका पूरी तरह शांत हो गई, क्योंकि वो अपने आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि कुछ दिनों से सिंघानिया मेंशन में आए दिन कोई ना कोई तमाशे होते रहते थे, इसलिए वो किसी और को परेशान नहीं करना चाहती थी। जैसे ही राधिका घर पहुंची, तो वैसे ही सबने उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखा। नानी माँ और रौनक एकदम से उसके लिए फिक्रमंद हो गई। रौनक ने राधिका से चिंतित होकर पूछा, राधिका दी तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई और तुम्हारी नाक इतनी लाल क्यों है, क्या तुम रो रही थी? ये सुनते ही राधिका की आंखें एक बार फिर भर आईं। उसने तुरंत रौनक को गले से लगा लिया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। इस बीच सुमित का कठोर चेहरा देखकर आकाश, ध्रुव और आहान एकदम से चौंक गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उससे कुछ पूछ सके। जैसे ही अरमान वहां आया, उसने बाकी सबको एक नजर देखा, लेकिन अभी तक वंशिका और आस्था वहां मौजूद नहीं थी और रश्मि भी अभी तक नहीं आई थी। ये देखते ही वो थोड़ा तमतमा गया और तेज आवाज में हिटलर की तरह भड़क उठा, ये क्या है, मैंने कहा था कि मुझे सभी लोग मेरे सामने मौजूद चाहिए, तो फिर बाकी सब कहाँ गायब हैं? उसकी आवाज में गुस्से को भांपते हुए सब लोग और एक दूसरे को बेबसी से देखने लगे। तभी दादाजी आगे आए, क्योंकि अरमान की बातें सुनकर उनका माथा थोड़ा झंझना उठा था और वो हल्के गुस्से में बोले, बेटा अभी तो कम से कम तुम हम सबके सामने अपनी मन की बात कह सकते हो, इतना नाटक क्यों कर रहे हो, क्या सबके सामने ढिंढोरा पीटना जरूरी है? कहीं ना कहीं अरमान आस्था का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आस्था के सामने ही वो अपना सरप्राइज बताना चाहता था। फिलहाल देर ना करते हुए सब लोग अरमान की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे, ये जानने के लिए आखिरकार अरमान क्या बताने वाला है। लेकिन अरमान ने जैसे कसम खा ली थी कि जब तक आस्था नहीं आएगी तब तक वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, इसलिए वो आस्था के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगा और वो आराम से जाकर अपनी किंग चेयर पर बैठ गया। फिर उसने जिद्दी अंदाज में दादाजी को जवाब दिया,
जब तक बाकी लोग नहीं आ जाते तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। फाइनली रश्मि, जो राधिका और सुमित के पीछे पीछे निकली थी, वो भी वहां पहुंच चुकी थी। सबको हॉल में जमा देखकर वो थोड़ी हैरान भी थी। वो सुमित को घूर घूर कर एकटक देख रही थी, क्योंकि वो सुमित से राधिका के साथ किए गए बर्ताव के बारे में सवाल पूछना चाहती थी। लेकिन अब अरमान को वहां गुस्से में बैठे देखकर और सब लोगों को एक साथ देखकर रश्मि उससे कुछ कह नहीं पाई, केवल चुपचाप से आकर राधिका के पास खड़ी हो गई। फिलहाल अरमान बार बार बेचैनी से अपनी घड़ी की ओर देख रहा था। धीरे धीरे शाम होने वाली थी, लेकिन अभी तक आस्था और वंशिका का कोई अता पता नहीं था। वंशिका के प्रोफेसर का घर वहां से लगभग 40 से 45 मिनट की दूरी पर था, जबकि रश्मि हॉस्पिटल सिंघानिया मेंशन के करीब था, इसलिए रश्मि और राधिका जल्दी ही वापस आ गए थे। लेकिन वंशिका और आस्था भी नहीं पहुंची थी, क्योंकि वो दोनों ट्रैफिक जैम में फंस गई थी। जैसे जैसे अरमान आस्था के आने का इंतजार कर रहा था, वैसे वैसे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो सोच रहा था कि अचानक ये एंग्री बर्ड कहां जा सकती है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहीं जाने की क्या जरूरत थी। क्या उसे नहीं पता कि इस घर में उसका एक छोटा बच्चा भी है? भले ही उसका बच्चा सो चुका था, फिर भी आस्था अभी तक आ जाना चाहिए था। थोड़ी देर बाद आस्था और वंशिका ने सिंघानिया मेंशन में एंट्री ली। आस्था ने हॉल में सभी लोगों को एक साथ परेशान देखा तो वो एकदम हैरान हो गई, इसलिए वो फटाफट नानी माँ के पास आते हुए बोली, नानी माँ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अंश तो सो गया था ना, वो ठीक तो है ना? आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।